ईशिका बिल्लू को घुमाने के लिए नीचे लेकर जा रही थी, तभी उसे पृथ्वी मिला। वो दोनों साथ में लिफ्ट में नीचे जाने लगे। अचानक पृथ्वी ने ईशिका से पूछा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। ईशिका को प्यार वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे ये टाइम वेस्ट करना लगता था। फिर भी पृथ्वी के पूछने पर ईशिका के दिमाग में सबसे पहले अभिमन्यु का चेहरा आया। खोए हुए शब्दों में ईशिका ने अभिमन्यु के फीचर्स को अपने आइडियल ड्रीम मैन के फीचर्स बताए। जब ईशिका को एहसास हुआ कि उसने अभिमन्यु के बारे में बात की है, ऊपर से पृथ्वी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी, तो ईशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे वो लड़के अच्छे लगते हैं जो फ्रेंडली नेचर के हों, जोक सुनाते हों, हंसते रहें, खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। ईशिका के बताते ही पृथ्वी का मुंह बन गया। एक हंसते रहने वाला, चुटकुले सुनाने वाला आदमी तो उसका बॉस कभी नहीं हो सकता था। वो तो एक सख्त मिजाज वाला आदमी था जो लोगों को डांटता रहता था। पृथ्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए देखकर ईशिका ने राहत की सांस ली, पर उसके गाल लाल होने लगे थे। लिफ्ट के रुकते ही उसने जल्दी से बिल्लू को अपनी गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। पृथ्वी ने आह भरी, क्योंकि यहाँ अभिमन्यु के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसके आसपास अभिमन्यु नहीं था, ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पलटा, उसने देखा कि पीछे अभिमन्यु खड़ा था। पृथ्वी जल्दी से उसके पास गया और हड़बड़ाकर बोला, सर, आपको नहीं लगता कि आपको मुस्कुराते रहना चाहिए? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो, अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा। उसे डांटने के बाद अभिमन्यु बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसको ईशिका दिखाई दी। पृथ्वी के कहे मुताबिक ना जाने क्यों अभिमन्यु ने ईशिका को देखकर मुस्कुराहट दी। वहीं ईशिका ने अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरानी से बोली, मिस्टर राजवंश, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बातों ही बातों में अभिमन्यु को परेशान करना चाह रही थी तो अभिमन्यु का तुरंत मुंह बन गया। पहले की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अभिमन्यु ने तुरंत वहां आने की सफाई देते हुए कहा, वो दादी ने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ इस कुत्ते को टहलाने के लिए जाऊं। अभिमन्यु ने फिर से वसुधा का नाम लेकर अपने वहां आने की एक्सप्लेनेशन दी, जिसे देखकर ईशिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ईशिका अभिमन्यु से बात करने लगी थी, इस वजह से उसका ध्यान बिल्लू पर से हट गया था। अचानक वो ईशिका के हाथ से छुटकर आगे की तरफ दौड़ने लगा। ईशिका उसके पीछे पीछे चल रही थी और अभिमन्यु उसके साथ आ रहा था। बाहर थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, जबकि ईशिका ने नॉर्मल सा पतला लूज शर्ट पहना था। उसे ठंड महसूस हुई तो वो अपने हाथों से अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। ईशिका बिल्लू को लेकर वापस कमरे में जाने का सोच रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। अभिमन्यु ने अपना ब्लेजर निकालकर ईशिका के कंधों पर सेट कर दिया था। ईशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो सिर्फ शर्ट पहने हुए था। ईशिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, अगर आप बीमार पड़ जाती तो आपकी वजह से दादी को भी वायरल हो जाता। उसकी ये सफाई सुनकर ईशिका खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसने अपने मन में कहा, ये कितना रूड है, सीधे सीधे बोल नहीं सकता क्या कि इसे मेरी परवाह है? ईशिका और अभिमन्यु साथ में चल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर राजवंश। ईशिका और अभिमन्यु ने पलट कर देखा तो पीछे राघव खड़ा था। उसकी तरफ देखकर अभिमन्यु ने ईशिका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु राघव के पास जाकर बोला, क्या हुआ? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, राघव ने ईशिका की तरफ देखकर कहा, जिसे वो नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। राघव बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी जब वो ऊपर गया तो लोग कियारा के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब कियारा ने पहली बार किसी से मदद मांगी तो उसने यही कहा कि उस जैसी प्यार में पागल लड़की को मर जाना चाहिए। शायद इसी वजह से उसने सर्जरी होने के बावजूद अपने जीने की इच्छा खो दी थी। ये सब ईशिका की वजह से हो रहा था, ये सोचकर राघव को गुस्सा आने लगा। अभिमन्यु जब राघव के पास गया तो राघव ने सीधे सीधे पूछा, इस वाली मिस सिंघानिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? अभिमन्यु ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, तुम इस सच को बदल नहीं सकते हो कि हमारे बीच एक रिश्ता है। तुम मेरे मासी के बेटे हो तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। हम दोनों फैमिलीज के बीच कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर मित्तल, तो बेहतर होगा कि आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहें, अभिमन्यु ने काफी रूडली जवाब दिया। तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, वरना तुम बहुत पछताओगे, राघव ने गुस्से में जवाब दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर ना देखने वाली हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो भौंहें उठाकर बोला, अगर किसी को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है तो वो तुम हो। रही बात पछताने की, तो वो मैं नहीं, तुम पछताने वाले हो। अभिमन्यु ने सीधे तौर पर नहीं कहा, पर वो इनडायरेक्टली राघव का मजाक बना रहा था, क्योंकि वो आयशा से बेवकूफ बन गया था। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? राघव ने चौंकते हुए पूछा। अभिमन्यु ने जानबूझकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। तभी राघव ने चिढ़ते हुए पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम इतने अजीब कैसे हो सकते हो अभिमन्यु? तुम? अचानक राघव बोलते हुए रुक गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। गुस्से से इस वक्त उसके चेहरे के भाव सर्द हो रहे थे। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हमारे बीच बिजनेस रिलेशंस है मिस्टर मित्तल, और आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है। आगे से अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास ही रखिएगा।
इतना कहकर अभिमन्यु वापस इशिका फिकास जाने लगा। पिछले दिनों जब राघव अभिमन्यु से मिला था तब उसे यही लगता था कि उसने लोगों से गलत सुना था। सब यही कहते थे कि अभिमन्यु काफी अग्रेसिव और गुस्से वाला इंसान है, वो काफी घमंडी भी है। लेकिन आज अभिमन्यु का ये रूप देखकर राघव को एहसास हो गया कि लोग गलत नहीं कह रहे थे। अभिमन्यु एक ऐसा इंसान था जिसके करीब जाकर भी कोई उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राघव एकटक अभिमन्यु को देख रहा था। उसने देखा कि इशिका के पास जाते ही उसके चेहरे के भाव पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गए थे। वहीं इशिका अभिमन्यु का जैकेट पहने हुए थी। उसे अब गर्मी का एहसास होने लगा था और उस जैकेट में से अभिमन्यु की हल्की खुशबू भी आ रही थी। उसे हमेशा से अभिमन्यु के परफ्यूम की स्मेल पसंद थी। इशिका वहां खड़ी थी तभी अभिमन्यु आया। उसने बिल्लू को अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो ऊपर चलते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर दोनों ऊपर चले गए। अगली सुबह हमेशा की तरह अभिमन्यु काम पर चला गया तो वहीं इशिका हॉस्पिटल में वसुधा के साथ कमरे में थी। वो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन डेवलप करने के लिए रिसर्च कर रही थी। उसकी रिसर्च पूरी होते ही उसने बायोफार्मास्यूटिकल्स को एक मेल किया और फिर खड़ी होकर पानी पिया। उसके बाद इशिका रिलैक्स करने के लिए बैठी तभी उसे कियारा का मैसेज रिसीव हुआ। उसने लिखा था, मिस सिंघानिया, क्या आज रात आपके पास टाइम है? मुझे आपसे मिलना है। अच्छा, मैं राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच हो रहे गेट टुगेदर अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, इशिका ने जवाब में लिखा। इशिका ने उसे जवाब दिया ही था कि तभी उसके पास दिशांक का कॉल आया। दिशांक गुस्से में लग रहा था। वो कॉल पर बोला, मैम हमें नए प्रोजेक्ट में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था? इशिका ने पूछा।
हम अपने हाइड्रोजन फ्यूल के रॉ मटेरियल्स मित्तल इंडस्ट्री से खरीदते हैं। अचानक उन्होंने हमें रॉ मटेरियल बेचने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैं कहीं और से भी ऑर्डर करके मंगवा सकता हूँ, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। हमें कुछ कमिटमेंट्स भी पूरे करने हैं। दिशांक ने एक सांस में सारी प्रॉब्लम को इशिका के सामने रख दिया था। हमारा रॉ मटेरियल दिल्ली के मित्तल इंडस्ट्री से आता है? इशिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कंपनी की सारी जिम्मेदारी दिशांक के ऊपर ही थी, बस वो टेक्निकल इश्यूज को संभालती थी। ऐसे में उसे नहीं पता था कि उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल मित्तल इंडस्ट्री से आता होगा। दिशांक ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ उन्हीं से खरीदते हैं। मैंने उनके मैनेजर से बात की थी, तब पता चला कि वो हमारे अलावा इतना बल्क में किसी को इतना मटेरियल नहीं देते हैं। उसने कहा कि ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं कि हमें रॉ मटेरियल ना बेचा जाए। ठीक है, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ, इशिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। फ़ोन रखने के बाद में इशिका ने डायरेक्ट कियारा के मॉम डैड से बात करने का फ़ैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई गलत फहमियाँ हों, इसलिए वो सीधे जाकर उनसे पूछना चाहती थी। इशिका कियारा के रूम की तरफ जा रही थी तभी उसे सामने से राघव आता हुआ दिखाई दिया। राघव को देखते ही इशिका ने कहा, हेलो मिस्टर मित्तल। राघव रुका और उसने गुस्से से इशिका की तरफ देखा। इशिका ने राघव के पास जाकर काफी आराम से कहा, मैं डॉक्टर मर्चेंट हूँ। हमारी कंपनी अपने हाइड्रोजन फ्यूल के सारे रॉ मटेरियल्स आपकी इंडस्ट्री से खरीदती है। अचानक मुझे पता चला कि उन्होंने हमें सामान बेचने से मना कर दिया है। क्या आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है मिस्टर मित्तल? कोई गलतफहमी नहीं हुई है, राघव ने बेरुखी से जवाब दिया। वो कुछ पल रुका और सख्त आवाज में बोला, मैंने उन्हें ऑर्डर दिए हैं कि आगे से आपकी कंपनी को कोई सामान ना बेचा जाए। और वो क्यों? इशिका ने हैरानी से पूछा। और रियली मिस सिंघानिया, कितनी इनोसेंट बन रही हैं ना आप, भूल गई हैं कि आपने कितना कुछ कहा था मेरी बहन को, राघव ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। इशिका को समझ नहीं आया कि आखिर उसने कियारा से कह क्या दिया था जिसकी वजह से राघव इतना गुस्सा हो गया था। इशिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। कियारा तो उससे काफी हंसकर मिलती थी और जब भी वो वापस जाती थी तो उससे यही कहती थी कि जल्द ही उससे मिलने के लिए आना। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मैंने कियारा को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा है, आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि कियारा की हेल्प करने के बाद आप इतने ज्यादा एहसान फरामोश निकलेंगे कि मेरी कंपनी पर अपना गुस्सा उतारेंगे। इशिका किस मदद की बात कर रही थी पहले राघव को समझ नहीं आया, बाद में उसे लगा कि इशिका पुलिस स्टेशन में गवाही देने को उनकी मदद बता रही थी। राघव ने आगे कहा, मिस सिंघानिया, पुलिस की मदद करना हर एक सिविलियन का फर्ज होता है, इसमें आपने हमारी कोई मदद नहीं की है। और एक मामूली सी मदद के लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आई हो? ओके, तो आपको वो सब मामूली सा लगता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। हालांकि वो काफी शांत रहती थी लेकिन राघव के बेवजह गुस्सा करने पर उसे भी गुस्सा आने लगा। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आगे से तुम्हारी कंपनी को मित्तल इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, राघव ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। पहले दिन जब इशिका राघव से मिली थी तो उसे यही लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। उसकी बहन के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लेने के लिए तुरंत आ गया था, लेकिन आज उसे वो एक घमंडी और बेवजह गुस्सा करने वाले इंसान के अलावा और कुछ नहीं लगा। इशिका उसे कुछ कहती उससे पहले राघव कियारा के कमरे में चला गया था। इशिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो अपने मन में बोली, भाड़ में जाए सब, मिस्टर लाजवंश बिल्कुल ठीक कहते हैं, कुछ लोग रिश्ते निभाने के लायक ही नहीं होते। मैं मिस्टर और मिसेज मित्तल से कोई बात नहीं करने वाली, सेल्फिश कहीं के।
इशिका गुस्से में वापस से वसुधा के कमरे में आ गई। जल्द ही शाम भी हो गई थी, जहां इशिका को अभिमन्यु के साथ पार्टी के लिए निकलना था। पार्टी काफी ग्रैंड थी, क्योंकि डील भी बहुत बड़ी हुई थी। उस पार्टी में राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के एम्प्लॉयज से लेकर बाकी बिजनेसमैन शामिल हुए थे। यहां तक कि कुछ एम्प्लॉयज तो दिल्ली से भी पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे। वहीं कियारा के हॉस्पिटल रूम में कियारा व्हीलचेयर पर थी और पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। उसने एक सिंपल बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। बीमार होने की वजह से उसके लुक को काफी सिंपल रखा गया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बालों को स्ट्रेट करके सिंपल सेट किया हुआ था। कियारा को तैयार हुआ देखकर नैना ने कहा, तुम्हें तो गेट टुगेदर्स पसंद नहीं है, फिर तुम वहां जाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हम सबके जाने के बाद तुम अकेली रह जाओगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाऊंगी। कियारा का चेहरा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो काफी उदास है। उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं मिस सिंघानिया को क्या हो गया, सुबह वो मुझसे मिलने आने वाली थी लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। ऊपर से मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही हो। वो आज पार्टी में जाने वाली है तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कियारा की इच्छा का सबने सम्मान किया और उसे पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दी थी। राघव उसकी व्हीलचेयर के साथ नीचे पार्किंग एरिया में पहुंच गया। जैसे ही वो लोग वहां गए तो उन्होंने देखा अभिमन्यु की गाड़ी वहां थी। अभिमन्यु और इशिका गाड़ी में बैठ रहे थे। कियारा ने इशिका को देख लिया था। वो एक्साइटेड होकर बोली, मिस सिंघानिया उस गाड़ी में है, उन्हें बोलो मुझसे बात करने के लिए, जल्दी जाओ।